आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 75। ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सवसाहूरं, लक्ष्मीनिवासनिलयं, विलीनविलयं निधाय हृदिवीरम्। आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य रचित यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है, उस पर क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी जो सहजानंद जी उनके प्रवचन हुए हैं, और इस आत्मानुशासन प्रवचन पुस्तक दूसरी उसमें हम 57 नंबर के पृष्ठ पर आ गए, 57 नया पैराग्राफ, वहां से हम पढ़ेंगे। स्वनिधि के अपरिचय की दरिद्रता। कहते हम दरिद्री है, कब तक? अपने निधि से परिचय न होगा तब तक। अपनी निधि क्या है, अपना स्वयं का वैभव क्या है, खजाना क्या है, तो अपना स्वरूप, तो उससे जब तक अपरिचय है वही दरिद्रता है। हम तो दारिद्र्य दूर करने के लिए नहीं, धन की अपेक्षा से देखते हैं, तो उसके लिए कितनी मेहनत, कितना क्या क्या, रात दिन उसी की चिंता लगी रहती है। दारिद्र मिट जाने पर और ज्यादा चिंता रहती है, नहीं समझे? बढ़ाने की,
संभालने की।
दरिद्री इतना दुखी नहीं था,
खर्चा
कहाँ करने की बात सही है, इतना धन हो जाता है कि कहाँ खर्चा करे ऐसा लगता है ना। हाँ, अभी हम यहाँ पढ़ते हैं। अपने ही घर में गड़ा हुआ धन यदि विदित नहीं है, यानी मालूम नहीं है, तो वह तो गरीबी ही अनुभव करेगा। और कदाचित यह विदित हो जाए कि मेरे घर में यह इस जगह बहुत बड़ी निधि गड़ी है, तो यद्यपि अभी मिलने में देर है, लेकिन उस निधि का परिचय होते ही अंतर में एक ठसक सी आ जाती है, एक बड़प्पन सा अनुभव होने लगता है। अभी तो पता चला कि इतना धन गड़ा हुआ है। जब तक इस जीव को अपने आप में बसी हुई ज्ञान और आनंद की निधि का परिचय नहीं होता, तब तक यह गरीब है। यह बाह्य पदार्थों में आशा कर करके दुखी होता रहता है। यानी अपना वैभव पता ही नहीं उसको, और पर चीज से मैं सुखी हो जाऊंगा, उससे मैं महान बन जाऊंगा, उससे मैं अमीर बन जाऊंगा, ऐसा समझता है। ये पेज नंबर 57 पर दूसरा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं हम। आश्चर्य इस बात का है कि दुखी भी होते जाते और उसी दुख को पसंद भी करते जाते, क्योंकि उसमें से निकलने का रास्ता बताने वाले हैं, मगर उसका भरोसा नहीं है, उसी में लगे रहते हैं। यह सब मोह की लीला है। जैसे घर में कभी बड़ी कलह हो जाए और अनेक प्रतिकूलताएं हो जाए, तो यह पुरुष चाहता है, ऊब करके कहता है, इस घर से तो जंगल में रहना भला है, अब इस घर में मैं न रहूंगा, और फिर रहता वह घर में ही है। चाहे कितनी विपदा आ जाए, यह सब क्या है? एक व्यामोह है। अच्छा, तो घर छोड़कर कहां जाए? सुख शांति ज्ञान पर आधारित, यानी घर छोड़कर भी जाता है तो भी उसको सुख शांति बाहर में नहीं मिलने वाली कहीं। वह ज्ञान तो बसाया नहीं, उस वस्तु की स्वतंत्रता का तो दृढ़ निर्णय किया नहीं, वस्तु की स्वतंत्रता का दृढ़ निर्णय कैसे होगा? हाँ मनीषा बेन, कुछ सिद्धांत मालूम है आपको? वस्तु स्वतंत्र है, इसके लिए कुछ सिद्धांत तो हमें मालूम होना चाहिए, नहीं तो निर्णय किसके आधार से करेंगे हम? यहाँ क्या लिखा है, वस्तु की स्वतंत्रता, प्रत्येक, हाँ तो प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, यानी अपने अपने स्वचतुष्टय में रहता है, एक द्रव्य का दूसरे प्रत्येक द्रव्य में अत्यंत अभाव है, बिल्कुल प्रवेश नहीं है, वो स्वयं अपना उत्पाद वे ध्रुवता कर रहता है, तो निमित्ता है तो यहाँ कार्य होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुख्य तो निमित्ताधीन दृष्टि पड़ी है अनादि से ही जीव की, यानी एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कुछ भी संबंध नहीं है, मुख्य बात है ये स्वतंत्रता का दृढ़ निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे ही धर्म व्यवहार क्रियाओं को करके, यानी जिसको धार्मिक क्रियाएं कहने में आते हैं, ये रोज पूजा कर रहा है, रोज दान दे रहा है, पाठ बोल रहा है, और कभी कभी क्या करता है, यात्रा भी करता है, यानी दया दान सब कर रहा है, तो ऐसे ही धर्म व्यवहार क्रियाओं को करके यह मन कहाँ तक स्थिर रह सकेगा? मूल बेस तो है नहीं है, अपना निज तत्व का अनुभव नहीं है, तो वो क्रिया करने से कुछ नहीं उसको शांति मिलेगी, कहाँ जाएगा? इस जीव की बड़ी विचित्र दशाएं हैं। संसार में अशरणता। एक बार राजा भोज की सभा में बहुत से पंडित बैठे थे, एक पंडित के पिता भी बैठे हुए थे। राजा ने पंडित के पिता से एक समस्या पूछी, किंतु वह तो मूर्ख था, पढ़ा लिखा न था। कोई यह नियम तो नहीं है कि पंडित का बाप भी पंडित हो, वकील का बाप भी वकील हो, डॉक्टर का बाप भी डॉक्टर हो, ऐसा कुछ नियम तो नहीं है, वह तो मूर्ख था। तो पिता अपने लड़के से कहता है, पुरारे बापा। बाप पुत्र को किसी देश में कहते हैं बापा, इसकी पूर्ति कर दे, यानी अभी इसकी पूर्ति कर दे, तू इसको कह दे। समस्या ने कोई एक लाइन बताई दी जाती है तो उसको पूरा करना पड़ता है, ऐसे उस संस्कृत में बहुत ऐसे सभाएं होती थी, काव्य शास्त्र विनोद जिसको हम कहते हैं ना, ये राजा भोज की बहुत सारी कथाएं प्रसिद्ध है, ये भोपाल इनके कारण बसा है राजा भोज का। हाँ, लड़का होशियार था, उसने पिता की मूर्खता छिपाने के लिए पुरारे बापा कहकर ही श्लोक बना दिया। ये पहले भी उन्होंने बताया था, आपको याद होगा ये श्लोक पहले भी बताया था, ये स्टोरी बताई थी पहले, ये आत्मानुशासन का नहीं है, ये उन्होंने बाहर से बताया। पुरारे वापारे गिरिरति दुरारोह शिखरे गिरौ सव्वे सव्वे दवदहन ज्वाला व्यतिकर धनु पाणि पश्चान् मृगयुग शतकम् धावति वृषम् क्वयाम किं कुर्मः हरिण शिशुरेवं विलपति। बापा रेवा पारे, रेवा ये बापा का वापा कर दिया उसने। उसने तो पूरा रे बापा कहा था, इसके आगे रे और लगाकर उसने पूरा रेवा पारे बना दिया। इसका अर्थ है कि रेवा नदी के तट पर रेवा पार हिरण का बच्चा खड़ा है। ये रेवा नदी कहाँ है मालूम है? कौन सा अपना सिद्ध क्षेत्र है? सिद्धवरकूट, सिद्धवरकूट है, वहाँ रेवा नदी है, वो था ना निर्वाण कांड में, रेवा नदी सिद्धवरकूट। और जंगल व पर्वतों में आग लगी हुई है और पीछे से 100 शिकारी, मृगयु शतकम, धनुष बाण लिए हुए उस हिरण के बच्चे का पीछा कर रहे हैं। ये उन्होंने स्टोरी बता रहे हैं, ये स्टोरी बता रहे हैं। भोज के काल में क्या हुआ था ये बता रहे हैं यहाँ पर। और वो संसार में अशरण नहीं हुए तो हिरण के बच्चे को कौन शरण है, इस तरह से वो बता रहे हैं। यानी जंगल में पर्वतों में आग लगी है और पीछे उसके 100 शिकारी बाण लेके खड़े और हिरण के बच्चे का पीछा कर रहे हैं। वहीं तो कोई आमा किम कुर्मा। उस समय वो हिरण का बच्चा अपने मन में यह सोचता है, कोई आमा किम कुर्मा, अर्थात मैं कहां पर जाऊं और क्या करूं। बड़ा ही विलाप करता है, उससे अधिक विपत्ति हमें ही है जो तनिक सी विभूति से सुखरस में मग्न हो रहे हैं, विषय साधनों को पाकर अपने को प्रभु से कम नहीं समझते हैं। संसारी जीव पर विपदा का बोझ, संसारी जीवन पर बहुत बड़ी विपदाओं का बोझ है। भला बताओ, आज वह मनुष्य है, अच्छा शरीर है, श्रेष्ठ मन है और मरकर हो गए कान खजूरा, तो कितना अंतर हो गया। कुछ भी किसी भी कीड़ों मकोड़ों का नाम ले लो ना, कहां तो मनुष्य और कहां यह कान खजूरा। मरकर हो गए पेड़ पौधे, अब तो अंगोपांग भी नहीं रहे, जिह्वा भी नहीं रही। यह क्या जीव पर कम विपदा है? देखो यहाँ तो पांचों इंद्रियां काम कर रही है, कुछ प्रतिकार के रूप में राग द्वेष भी करता है, जो कुछ करना है उसको लगता है वो करता है। वहां तो कुछ नहीं, बस एक ही स्पर्शन इंद्रिय है। पेड़ पौधों में क्या है? वह जीव विलाप करता रहता है कि मैं कहां पर जाऊं और मैं क्या करूं। सारे दुखों का निदान यह शरीर है और हम तो स्वयं सुख के निदान है, परंतु शरीर से जुदा है और सुख के निदान है, परंतु हमने अपने को शरीर मान लिया है तो ये दुखों का निदान बन गया। जितने भी कष्ट है सब इसी शरीर के कारण होते हैं। शरीर के कारण यानी शरीर मैं हूं ये मान्यता के कारण, और जिसके कारण कष्ट होते हैं उसमें ही हमें प्रीति रखते हैं, हम प्रीति रखते हैं, हमें नहीं, हम प्रीति रखते हैं। शरीर से छुटकारे का उपाय की जिज्ञासा, यानी इसे हम इससे कैसे छूटेंगे, ऐसी जिज्ञासा भी हो जावे वो कह रहे भी। अब कोई पूछ तो दे कि मैं क्या करूं महाराज, ये अपना गला घोट दे क्या, इस शरीर से अलग हो जाए क्या, मरण कर ले क्या, यानी कोई आत्मघात करने से इससे छुटकारा होगा क्या, ये पूछ रहे। शरीर जब क्लेशों का कारण है तो क्या करे। देखिए, जब कभी दुष्टों के संग में फंस जाते हैं तो वहां अपनी ऐंठ को बताने से काम नहीं निकलता। वहां जो मधुराई से और धीरे से यत्न द्वारा वहां से छूटे तो निकल सकते हैं। ऐसे कोई सोचे कि यह शरीर दुखों का कारण है इसलिए शरीर का घात कर दे, प्राण तज दे, तो यूं तो शरीर का पिंड न छूटेगा, यह शरीर छूट जाएगा, किंतु फिर दूसरा लेना पड़ेगा और वही इससे भी गया बीता होगा, क्योंकि आत्मघात करके जा गया है तो इससे गया बीता होगा, और कष्ट कई गुणित सामने आ ही जाएंगे। इसका छुटकारा पाने का प्रथम उपाय ज्ञान भावना माना है। मैं शरीर से न्यारा केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, केवल या नहीं, केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। प्रभु स्वरूप के ध्यान से अध्यात्म साहस। हे प्रभु, तुम शरीर से न्यारे ज्ञान मात्र हो, कोई मुझ में तुम्हारी अतिशय भक्ति बने, हमारे गुणों का तीव्र अनुराग जगे तो मुझ में ज्ञान भावना का बल बढ़ेगा। हमारे गुणों का, अच्छा आपके गुण वैसे मेरे गुण हैं, यह शरीर सर्व प्रकार अशुचि है, अशुचि ने अपवित्र है, बहुत दुखों से व्याप्त है। इसमें रहते हुए यह मनुष्य विरक्त तो होता नहीं, उल्टा अधिकाधिक प्रीति ही करता है। जिसने न जाना अपने आत्मा के सहज स्वभाव के अनुभव का आनंद, वह तो बाहरी पदार्थों की आशा, प्रतीक्षा, भोग आदि करके ही अपने को सुखी मानने का यत्न करेगा। सुखी नहीं होगा, सुखी मानने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि इसने खाया हुआ है अपने उपयोग में परद्रव्यों की प्रीति का भोजन। इसे कैसे रुचेगा बढ़िया आनंद का भोजन? विषय क्षार वमन पूर्वक आत्म माधुर्यानुभव। दो चीटियां थी, वो चीटियों की स्टोरी बता रहे हैं। क्षार यानी वो खारा नमक। एक चीटी तो नमक वाले की दुकान में रहती थी और एक शक्कर वाले की दुकान में रहती थी। एक तो रोज शक्कर खाए और एक रोज नमक खाए। एक बार नमक की दुकान में रहने वाली चींटी के पास शक्कर वाली चींटी गई तो और बोली, बहन तुम यहाँ रोज खारी क्यों खाती हो? हमारे साथ चलो, हम सदा मिठाई तुम्हें खिलावेंगे। उसे विश्वास न हुआ। उसके बहुत बहुत समझाने पर वह चली तो सही, पर मुख में एक नमक की डल्ली लेकर चली ताकि वहां भूखों न मरना पड़े। जब वहां दोनों चींटियों ने जाकर शक्कर का स्वाद लिया तो शक्कर में रहने वाली चींटी पूछती है, कहो बहन कुछ मीठा स्वाद आया? तो वो बोली, नहीं आया। फिर पूछा कि तुम्हारे चोंच में कुछ रखा तो नहीं है? बोली, हाँ एक नमक की डली रखी है, वह इसलिए ले आई हूँ कि मुझे कहीं उपवास न करना पड़े। तो शक्कर में रहने वाली चींटी बोली, अरे नमक की डली को मुख से निकाल दे तब स्वाद दे। उसने नमक की डली को मुख से निकाल दिया, तब स्वाद लिया तो स्वाद आया। अब शक्कर में रहने वाली चींटी पूछती है, कहो बहन अब कुछ स्वाद आया? तो वह बोली, हाँ बहन बड़ा स्वाद आया। नमक में रहने वाली चींटी पूछती है, कहो बहन ऐसा मधुर स्वाद तुम कब से ले रही हो? तो वह बोली कि हम तो रोज रोज ऐसा मधुर स्वाद लिया करती हैं। ऐसे ही जानो ये विषय विष जब तक रुचते रहेंगे, ये मुख्य बात है, उसकी रुचि लेकर फिर आत्मा को समझना जानना चाहते, अनुभव करना चाहते, ध्यान करना चाहते। विषय विष जब तक रुचते रहेंगे तब तक आत्मीय सहज आनंद रस में प्रीति नहीं जग सकती। कहीं ना कहीं बाहर की कहीं मिठास पड़ी है तो उसका आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, यानी वो रुचि बढ़कर होती है ना आत्मा से। जिसे आत्मीय आनंद रस में प्रीति नहीं जग सकती उसको प्रभु में भक्ति भी नहीं हो सकती। क्या बात है, तो हम तो इतनी भक्ति करते हैं ना, वो सच्ची नहीं कहलाएगी। वह प्रभु की महत्ता जानेगा ही क्या? स्वानुभव पूर्वक ही प्रभु की भी महत्ता आती। अशुचि शरीर का दुरुपयोग। ये जगत के प्राणी इस अशुचि शरीर से विरक्त नहीं होते। इन कर्मों ने तो इसे मानो इसलिए यह अशुचि शरीर दिया कि इस शरीर से शीघ्र विरक्त हो जाए, किंतु यह संसारी ऐसा सुखद निकला कि ऐसे गंदे शरीर में रहते हुए भी विरक्ति नहीं कर सकता। मुनिजन इसे समझाते हैं मानो बड़ी करुणा करके समझा रहे हैं, जैसे कोई बालक आग को ही बार बार हाथों से पकड़ना चाहे या मिट्टी ही बार बार खाते रहने की आदत बनाए तो उसकी माँ उसे थप्पड़ मारकर डांट कर उसकी आदत को छुड़ाती है। ऐसे यद्यपि गृहस्थजनों को साधुजनों का उपदेश नहीं रुचता, लेकिन ये साधुजन फिर भी करुणा के कारण बार बार बताते ही तो चले जा रहे हैं। यह जीव कभी तो सुलझेगा ही। वे मुनिजन इस व्यामोही जीव को शरीर से विरक्त करने का यत्न कर रहे हैं। जैसे अपना स्वार्थ सदे तैसे तो सुख देने वाले बहुत है, किंतु मनुजनों का क्या स्वार्थ सद रहा है? क्या कहते हैं? अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी थोड़ी आपको अच्छी बातें बताने वाले, कहने वाले, देने वाले बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि उनका कुछ स्वार्थ उसमें सत्ता है। तो मुनिजनों का इसमें क्या है? वो तो अपना आनंद स्वयं भोग रहे हैं। उपदेश देकर, यथार्थ ज्ञान कराकर, संसार शरीर और भोगों से विरक्ति उत्पन्न कराकर, इनका कौन सा स्वार्थ सद रहा है? ये साधुजन निस्वार्थ है। इस जगत के जीवों पर करुणा करके भगवान की परंपरा से चली आई हुई पद्धति के अनुसार उपदेश दिया करते हैं। ये महत्व की बात है। यानी सर्वज्ञ से वो जुड़ी हुई वो परंपरा, उसा ही वैसा ही उपदेश देते हैं। इस शरीर में आसक्त मत हो। शरीर श्रृंगार की व्यर्थता। कई लोग तो इस शरीर को गहनों से सजाकर, सफेद राख आदि कोई चीज लपेट कर अनेक तरह से इस शरीर को सजाते हैं। न जाने क्या दृष्टि है उनकी। अरे किसको प्रसन्न करने के लिए शरीर को सजा रहे हैं? जगत में दो तरह के लोग हैं, कुछ तो दुष्ट और कुछ सज्जन। ऐसे बनावटी सजे हुए शरीर को देखकर कोई दुष्ट, अज्ञानी, अभिलाषी, कामी भले ही कुछ अच्छा कह दे, किंतु सज्जन, ज्ञानी, विरक्त तो उसे मूर्ख ही कहेंगे। कैसी बाह्य दृष्टि बनी है, कितना मोह ममत्व में ध्यान बढ़ाया है, ऐसी कृत्रिमता, ऐसी बनावट करते हैं जिससे दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि मेरा शरीर कितना सुंदर है। सुंदरता में क्लेश कारणता। सुंदर किसे कहते हैं? इसमें तीन शब्द हैं, सु, उंद और अर। सु का अर्थ है भली प्रकार, उंदी क्लेदने धातु है, जो अच्छी प्रकार कष्ट दे उसे सुंदर कहते हैं। मगर दुनिया ने यह जाना कि सुंदर के मायने है कोई उत्कृष्ट चीज, इसी से लोग अपने प्यारों का भी नाम सुंदर रखने लगे। सुंदरलाल भी होता है ना। किसी को विदित नहीं है कि सुंदर शब्द का भीतर में अर्थ क्या है, और यह बात ठीक भी है। जो जितना मनप्रिय हो, इष्ट हो, अभीष्ट हो, वह पदार्थ इस जीव को धीरे धीरे तड़पा कर दुखी करने का ही कारण बनता है। इस कारण अभीष्ट पदार्थों का सुंदर नाम लेना यथावत ठीक है। ओह, कितनी भूल लदी हुई है इस उपयोग में, कितनी बातें बसी हुई है। सब लोग अपनी अपनी जाने, किसी को चिंता पुत्र, स्त्री, वैभव, धन, कुछ न कुछ अनेक ऐसी बातें बसी हुई है, वे उनसे अपने को हटा नहीं पाते हैं। ऐसा उनका अयोग्य उपादान है। संकट हारिणी ज्ञान भावना। आत्म भावना कहो, ज्ञान भावना कहो, आत्म समाधि कहो, ऐसा अलग अलग नाम इसी के हैं। सब संकटों को दूर करने का उपाय ज्ञान भावना है। मैं ज्ञान मात्र हूं, सबसे निराला हूं, ऐसी बार बार भावना बनाए और अपने आप में इस ज्ञान स्वरूप को ही निरखा करे, इससे ही संकट दूर हो गए। बाहरी दिखावे की प्रवृत्तियों से क्लेश दूर नहीं होते। एक बुढ़िया थी, वह अपने घर में पतले गोबर से लीप रही थी। वह गोबर को जमीन पर डाल दे और उसमें काफी पानी डालकर उसे बिल्कुल पतला बना दे, फिर उसे उसी जमीन पर लीपे, तो वह बुढ़िया शायद जैनी होगी। सो गोबर से लीपती जाए और कहती जाए, चींटी चींटी चढ़ो पहाड़, तुम पर आई गोबर की धार। तुम न चढ़ो तो तुम पर पाप, हम न कहे तो हम पर पाप। तो ऐसे पापों के दूर करने की क्रियाओं से तो काम नहीं चलता। आंतरिक भेद विज्ञान के द्वारा पर से उपेक्षा करके अपने को ज्ञान मात्र भावने में चिरकाल तक बनाए तो उससे सिद्धि होती है। चिरकाल ने लंबे काल तक। देखो भेद विज्ञान ने किससे भेद करना है, मैं तो सबसे तो जुदा ही हूं, उससे अच्छी तरह से ज्ञान करना है। सबसे में तो अन्य चीजें हो गई, शरीर भी हो गया, राग आदि भी हो गए, क्योंकि मैं तो अपने में क्या रखना है, मेरे अनंत गुण और उसकी स्वभाव रूप पर्याय, लेना तो लेना, उसको भी गौण कर सकते हम। तो यह आंतरिक भेद विज्ञान के द्वारा पर से उपेक्षा करके अपने को ज्ञान मात्र भावने में चिरकाल तक बनाए तो उससे सिद्धि होती है। इस छंद में यह शिक्षा दी है कि शरीर से प्रीति छोड़ो और खुद जो ज्ञान शरीर है उस अंतस तत्व में प्रीति करो। इस शरीर को मैं मान रहा लिया तो इसको सजाने में, ठीक ठाक रखने में, उसी की निगरानी रखने में अपने विचार वैसे ही आते हैं सहज रूप से। अपने को ज्ञान में मान लिया तो वो मैं के लिए सब कुछ करने के हम तैयार है जो उसके लिए अच्छा होगा। देखो भेद विज्ञान ने पर से भिन्न अपने को जाना है,
राग से भिन्न जाना,
और फिर अपने में अभेद हो जाना है, अपने को ही जानते रहना है। भेद ज्ञान ने भेदों को ही नहीं जानते रहना है, पहले पर को भी जानना है, अपने को भी जानना है, दोनों का भेद निर्णय करना है और फिर उनको लक्ष्य छोड़कर अपने में जम जाना है। वो तो जुदी बात है, वो भेद ज्ञानी हो। मैं रंग राग से भिन्न भेद से, वो भेद से भी भिन्न हूँ, वो बात अलग है। हाँ, यानी अपने जो अनंत गुण है और पर्याय है तो समझने के लिए हमने इसके भेद किए। मैं तो अभेद अखंड एक, मैं एक चीज हूँ कि अनेक हूँ, पहले ये नक्की करो। समझाने के लिए वो अनेकता जो है उसके अंदर, उसको गौण करके क्या रह जाएगा, एक अखंड, यानी वस्तु एक अखंड है। वस्तु में क्या है तो उसके भेद करके हम उसके विशेषताओं को समझते हैं, परंतु वस्तु इटसेल्फ एक है ना, एक चीज है। वो चीज कैसी है पूछते हैं तो उसके गुणों और पर्यायों का वर्णन आता है, और है तो वस्तु एक, और उसको एकपने से अनुभव करना है तब वो भेदों का लक्ष्य छूट जाता है। भेदों को जानकर फिर उसका लक्ष्य छोड़ते हैं, इसलिए भेद से भी भिन्न नहीं सकते वहां पर। अब नंबर 98 बराबर है क्या, तपासा है तो मित थे थी बहुना किमुदीरिते न भूयस्त्वयैव ननु जन्मनि भुक्त भुक्तम एतावदेव कथितम तव संकलय्य सर्वापदाम है, सर्वपदाम ने सर्वापदाम सर्वापदाम पदमिदम जननम जनानाम। सर्वापदा सर्व आपदा पढ़ेंगे अभी इसको। इत्थं तथेति बहुना किमुदीरितेन भूयस्त्वयैव जन्मनि भुक्त भुक्तम् एतावदेव कथितं तव संकलय्य सर्वापदां पदमिदं जननं जनानाम। अर्थ ऐसे है तैसे या प्रकार बहुत कहने करी कहा साध्य है। यह ऐसा है वह ऐसा है कहने से क्या है। हे जीव, तई ही संसार विषय शरीर है, सो वारंवार भोग्या भोग्या और छोड़िया, तेरे ताई संकोच करी इतना ही कहा है। यानी कितना कहेंगे तो उससे कुछ नहीं साध्य होने वाला, तो तू अनेक वो शरीरों को भोग कर छोड़े है, જીવની કઈ એવું શરીર હૈ સો સર્વ આપદાનિકા સ્થાનક હૈ. ભાવાર્થ, દાષ્ટાંતો બહોત કયા ઓર તેરા ભલા ન હોના હૈ તો ઘના કહેના નિષ્ફળ હૈ. ક્યા કહે તો બહોત બાતે સમજાઈ, ઉસકો દૃષ્ટાંત ભી દિયે ઓર ક્યા ક્યા ક્યા. તો કહેતે કે તેરા ભલા ન હોના હૈ તો ઘના કહેના નિષ્ફળ હૈ, ક્યોંકિ તોરી તેરી હોનહારી એસી કે તો કુછ નહીં માનને વાલા હૈ. તૈહી અનાદિત શરીરધારી તહાં અનેક દુઃખ ભોગી વાકો છોરી, યાની ઉસકો છોડકર નવીન શરીર ધાર્યા સો હમ સંક્ષેપ કરી અબ ઇતના હી કહે હૈ. યહુ શરીર હી જન્મ મરણ ક્ષુધા તૃષા રોગાદિ સર્વ દુઃખનિકા સ્થાનક હૈ. તાતે શરીર તૈ વિરક્ત હોઈ જૈસે શરીર કે સંબંધ કા અભાવ હોઈ તૈસે ઉપાય કરના યોગ્ય હૈ. શરીર કા અભાવ એને મોક્ષ જૈસે પ્રાપ્ત હોગા વૈસા ઉપાય કરના ચાહીએ. અબ હમ પ્રવચન પડેંગે યહાં સે. હા, પેજ નંબર 60 શ્લોક કે નીચે સાધુ સંતો કા કરુણા પ્રેરિત ઉપદેશ. સંતો કા નહીં, સંતો કા. સંસારી પ્રાણી ઇસ શરીર સે વિમુખ નહીં હોતે હૈ. શરીરકૃત અનેક ઉપદ્રવ ઉપસર્ગ સહતે હુએ ભી શરીર સે વિરક્ત નહીં હોતે, નહીં હોતે. સહતે હુએ ભી લિખે ના, વિરક્ત નહીં હોતે હૈ. અનેક ઉપદ્રવ ઉપસર્ગ ક્યાં હૈ, ભયાનક રોગ ભી આ જાય, કૈસે ભી કરે, ઉસકે લિયે ક્યા ક્યા ઇલાજ નહીં કરતા, કહાં કહાં કે દેશ વિદેશ મેં ભી જાયેગા, મંત્ર યંત્ર તંત્ર જો કુછ હૈ વો સબ સબ કુછ કરેગા. તો કહેતે ફિર ભી ઉસસે વિરક્ત નહીં હોતે. સબકી યહી હાલત હૈ ને. પહેલે મેં પહેલે ઉપદેશ ભી એસે દેખે ને, ઇસકો દિખા ઉસકો દિખા ઉસકો દિખા, પરંતુ અભી ચલો ઇસસે વિરક્ત હોકર અભી અપને મેં રમ જાઓ, એસા વિચાર નહીં આતા ઉસ સમય. पहले में पहले उसका इलाज करके. हाँ हाँ, साधु जन ज्ञानी पुरुष इस जीव को शरीर के विमुख करने के लिए नाना प्रकार से उपदेश देते हैं. साधु संतों को इतनी अधिक शरीर की बुराई करने की क्या पड़ी है और जीवों को शरीर से विमुख करने की क्या पड़ी है, यानी क्यों ऐसा शरीर से इतना बारंबार उपदेश दे रहे विरक्त होने का. इसके उत्तर में यह छंद कहा जा रहा है, बहुत क्या कहे. इस संसार में शरीर को बार बार भोगा और छोड़ा, जितना कुछ कहा जाए इस शरीर के कारण होने वाले क्लेशों का और क्लेशों का कारण होने से शरीर की असारता को जितना भी कहा जाए वह सब थोड़ा है. यह शरीर सर्व विपत्तियों का स्थान है, नारक शरीर का क्लेश. नरक गति में जो क्लेश नारकी भोगते हैं वह सुनने में भी बड़ा असह्य लगता है. बच्चे सुनते हैं या चित्र देखते तो कांप जाते डर से, और नहीं नहीं हमको पाप नहीं करना, नरक में नहीं जाना, यानी वो उससे उधार जाने से डर के वो फिर पाप छोड़ना चाहते हैं. यानी उनको भी संयोग अच्छे लगते हैं, इसलिए ऐसे संयोग नहीं चाहिए, इसलिए वो पाप नहीं करना चाहते. परंतु वहां पर भी पाप छोड़कर पुण्य करो इतना ही विचार रहता है, मैं अपना स्वरूप कैसे समझू, ये वहां पर भी विचार नहीं है. वे नारकी जीव एक दूसरे को जब देखते हैं तो देखते ही नारकियों पर ऐसा टूट पड़ते हैं जैसे कोई कुत्ता किसी नवीन कुत्ते को देखे तो उस पर टूट पड़ता है. यानी ऐसे ही परस्पर उनके होता ही न रत इति नारकी, कोई एक दूसरे में लगाव नहीं रहता उनको. ये नारकी जीव पैदा होते हैं किस स्थान से, जो नरक पृथ्वी का भाग है उसमें तिकोने चौकोने विकराल कुछ स्थान बने हैं. उन स्थानों से जीव नारकी होकर सिर के बल औंधा गिरता है, यानी जो उनके दिल होते हैं उसके टॉप में मधु छत्ते की तरह वहाँ कुछ जन्मने के ठिकाने हैं, उसमें से भी वो कटते कटते ही नीचे आता है और वहाँ बहुत नीचे जमीन पर गिरता है, और वहाँ पर भी नुकीले भाके बाले वगैरह ऐसी चीजें रहती है, उछलता है फिर टपकता है फिर उछलता है फिर नीचे टपकता है सिर के, पूरा बिल है ऐसा, और उसके टॉप में मधु छत्ते जैसे उनके उपजने के स्थान है, वहाँ वो पर्याप्ति से पूर्ण होकर अंतर्मूर्त में शरीर तैयार हो जाता है और फिर वहां से नीचे टपकते हैं। वहां लिखा ना सिर के बल औंधा गिरता है, जमीन पर गिरने के बाद यह कितनी बार उछलता है और गिरता है वो सारा आता है, कौन से नरक में कितना उछलता है कितनी बार वो उछलता है वो सब वर्णन है शास्त्र में। इन नारकियों को जन्मते ही महाक्लेश मिलते हैं, उस दुख से कुछ विराम पाया वह नारकी भूमि में कुछ स्थिर हुआ कि एकदम दूसरे नारकी उस पर टूट पड़ते हैं। नारकी जीव दूसरे को सताए वहां उन्हें कोई हथियार लाठी वगैरह नहीं खोजने पड़ते हैं, उनकी इच्छा हुई कि मैं इसे तलवार मार दूं, तो इस इच्छा के साथ ही हाथ के उठाते ही हाथ तलवार का रूप रख लेते हैं, ये उसको अपृथक विक्रिया कहते हैं। वो अनेक शरीर नहीं बनाते, एक ही शरीर के अनेक रूप बना सकते, सिंह हो जाए बिच्छू हो जाए, इस तरह से वो होकर वो दूसरे को पीड़ा देते हैं। वहां कोई ये तो त्रस अन्य जीव नहीं है, तीर अंश वगैरह जितने भी शस्त्र वे चाहे मारने के लिए वे शस्त्र उनके हाथ ही बन जाते हैं, ऐसा उनका वैकृत शरीर है। नरक भूमि, अपने यहाँ वो रैगिंग चलता है ना, नए स्टूडेंट आते हैं, हाँ तो वो नरक से आए हुए होंगे शायद, पहले के संस्कार बने पड़े। हाँ तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले, तीर्थंकर नहीं है जो यहाँ से तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू किया था मनुष्यों ने, अब मरकर अभी नरक में गए हैं और वहां की तो आयु लंबी है ना, असंख्यात है, पहले में भी असंख्यात है दूसरे में भी और तीसरे में भी, तीनों में, परंतु आए तो थोड़ी संख्या संख्यात यहाँ जन्म लेंगे, क्योंकि गए थे तभी कुछ काल के बाद कुछ काल के बाद कुछ काल के बाद, परंतु वहां सागर यानी कितनी लंबी आयु है, वो तो साधिक तीन सागर तो तीसरे नरक की आयु है तीर्थंकर वाले, तीर्थंकर बांधने वाले के, वैसे सात सागर है परंतु साधिक तीन कहते हैं इसके लिए तीर्थंकर प्रकृति वाले के लिए।
माने जो साइक नहीं होते हैं उसका तो छूट जाता है ना थोड़ी टाइम,
वो अंतर्मूर्त के लिए, परंतु वहाँ पर्याप्ति वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही सम्यक तो प्राप्त हो जाता है, तीर्थंकर प्रकृति बांधते, वो दूसरे और तीसरे नरक के लिए, पहले नरक में जाने वाला साइक ही जाता है। नरक भूमि, नरक में रात दिवस बराबर होते हैं, रात दिवस के वहां विभाग तो है ही नहीं, न रात है न दिन, किंतु जहां जितना अंधेरा है प्रकाश है वहां उतना ही अंधेरा प्रकाश है, यानी वो तो जितना जो कुछ है वो जो वैसा ही कांस्टेंट रहेगा, तो वो कब सोते होंगे? तिस्त्यान वृद्धि निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला का उदय ना नारकियों को है ना देवों को है और ना भोगभूमि में है, वो तीन गहरी निद्रा वाले, वो निद्रा प्रचला तो नहीं के बराबर है जैसे, इसलिए हम कहते यहीं पर सो लो।
लेकिन वो ही तीनों अशुभ निद्रा है, कैसा कुछ नहीं,
सभी अशुभ ही है,
वो
अति तीव्र है। हाँ बोलो, वो होती है ना निद्रा और प्रचला रहती है ना, देवों में भी और नारकियों में भी। देखो पहली पृथ्वी में अर्थात पहले नरक में रत्न जितना ही मात्र प्रकाश है, जैसे कोई रत्न इतना ही भर चमकता है कि यह मालूम पड़ जाए कि यहाँ रत्न रखा है, रत्न प्रभा। कहीं दीपक की तरह उसका प्रकाश नहीं होता, कुछ थोड़ा सा और प्रकाश हो गया, जैसे कि रात को देखने वाली घड़ी होती है उसमें जैसा प्रकाश है उतना ही मात्र पहले नरक में प्रकाश है। इस नरक का नाम है रत्न प्रभा। दूसरे नरक में शरीर की जितनी आभा है, शक्कर सफेद होती है उसके आभा क्या रहती है, क्या अंधेरे में दिख जाती है? हाँ, संभव है कि कुछ दिख जाए। इतना ही मात्र जहाँ प्रकाश है बस यही है दूसरे नरक की स्थिति, शर्करा प्रभा। तीसरे नरक में अंधेरा दिख जाती है, जैसे बालू की रेती होती है उसमें कहाँ उजाला है, ऐसा ही अंधेरा तीसरे नरक में है। चौथे नरक में कीचड़ जैसा अंधेरा है, पंक प्रभा है ना। देखो पहले का नाम क्या था, रत्न प्रभा, दूसरी का नाम क्या था, शर्करा प्रभा, तीसरी का नाम बालू का प्रभा। चौथी का नाम पंक प्रभा, पंक यानी कीचड़। पांचवे नरक में धुआं जैसा अंधेरा है, धूम प्रभा। छठवे नरक में जितना कृष्ण पक्ष में अंधेरा रहता है उतना है, तम प्रभा। और सातवें नरक में घोर अंधेरा है, महातम प्रभा, धूम प्रभा, धूम, धूम प्रभा। गम्मा है, वंशा है, तेजा, तेजा नहीं, मेघा, मेघा, अंजना, मघवी, माघवी, छठी सातवें।
लेकिन ये तो सब अच्छे अच्छे नाम है,
इसीलिए वो स्वामी जी के जमाने में तो स्टोरी बताते ना हमेशा। एक बूढ़ी थी, वो क्या किधर क्या इधर उधर गप्पे मारते होगी क्या, किधर कहाँ जाना चाहती हूँ, रत्न प्रभा में जाएगी, नहीं तो आप जैसे लोग जाएंगे वो हम कहाँ जाएंगे। उसको लगा रत्न प्रभा नाम है कोई बहुत अच्छी जगह होगी। नरक भूमि का कष्ट, रंजना नहीं, अंजना, अरिष्टा, माधवी नाम होता है, माघवी है इनका, माघवी। नरक भूमि का कष्ट, नरकों की भूमि इतनी करंट वाली है, इतनी कठिन है कि उस जमीन के छूते ही हजारों बिच्छू काटने जितना कष्ट होता है। यह शंका न करना कि क्या नरक में भूमि ऐसी ही दुस्सह है कि उस भूमि के छूने से ही हजारों बिच्छुओं के काटने जैसा दुख होता है, जैसे किसी जगह जमीन पर या भींत में बिजली का करंट आ जाए तो वहां पर पड़े हुए लोग ही उसके दुख को जान सकते हैं, ऐसे ही नारकी जीवों को कितने कष्ट है उसे वहां के नारकी ही जान सकते हैं। ऐसे भयंकर दुस्सह कष्ट नारकी जीव भोगते रहते हैं। नारकियों को विपरीत ज्ञान, तीसरे तीसरे नरक तक जो कुछ कलह प्रिय देव, जो कि असुर जाति के देव है, असुर कुमार कहते हैं उनको, ये भवनवासी देव होते हैं।
हाँ, लेकिन वहाँ देवों को जाने की क्या इच्छा होती है,
ऐसे वो तो कलह प्रिय है ना,
लड़ाते हैं ना उनको,
मारते भी
हैं। अभी डॉक्टर क्यों जाते हैं हॉस्पिटल में, इतने रोग है, इतने गंदी है, इनको आनंद मिलता है उनको दूसरों को भिड़ाने में। जाएंगे कहीं तिरियंश में, एक केंद्रीय में जाएंगे और कहाँ जाएंगे। तो वे जाकर वहां नारकियों को भिड़ाते हैं कि तुमको पूर्व भव में इसने ऐसा कष्ट दिया था। जैसे मनुष्यों में क्या होता है, वो क्या कहते हैं, कुक्कुट, क्या कहेंगे कुक्कड़, उसको क्या कहेंगे हिंदी में, क्या कहते हैं, कोमड़ा कोमड़ा, मुर्गे मुर्गे, मुर्गियों की फाइटिंग करते हैं वो स्पेन में, वो बुल का, बुल का होता है, हाँ वो होता है, बहुत जगह होता है। ऐसा ही है ना, अभी उसके छोड़ो, मनुष्य नहीं करते हैं ये, क्या बॉक्सिंग, क्या दूसरा है, दूसरा और क्या क्या करते है, मारते है, कुछ भी करते है, वो क्या है, हाँ। तो यहाँ कहते वो आपस में भिड़ाते कि तुमको पूर्व भव में इसने ऐसा कष्ट दिया था, याद दिलाते हैं, उसका कठिन क्लेश भोगते हैं। और उन नारकियों को भी ऐसा ज्ञान होता है, चाहे पूर्व भव ने माता ने पुत्र की आंखों में काजल लगाया हो अथवा सलाई से अंजन लगाया हो, लेकिन यह पुत्र का जीव और माँ का जीव नरक में पहुंचे तो पुत्र का जीव ऐसा ज्ञान करेगा, इसने मेरी आंखें फोड़ने के लिए आंखों में सलाई डाली थी, अंगुली घुसेड़ी थी। कुछ याद आता है तो इसको अर्थ ऐसा लगाता है, विपरीत विशेष दुख के लिए नारक शरीर की विशेषता। ये नारकी जीव एक दूसरे के शरीर के तिल तिल बराबर टुकड़े कर डालते हैं, लेकिन असाता वेदनीय का कितना तीव्र उदय है कि वह शरीर तिल तिल बराबर खंडित हो जाने पर भी बहुत ही जल्दी पारे की तरह मिलकर पूरा शरीर बन जाता है। ऐसे दुस्सह दुख इस जीवों ने हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह, मिथ्यात्व, मोह, ममता, अहंकार, इन सब अपराधों के कारण सहे हैं। ये इसको विक्रिया ही कहते हैं, शरीर का कोई रूप बनाना ही विक्रिया है, यानी बड़ा बनाए, छोटा बनाए, या बिच्छू बनाए, सिंह बनाए, शरीर का ही नहीं, दो अलग अलग शरीर नहीं बना सकते, अनेक शरीर नहीं बनाते, जैसे देवों में अनेक शरीर बनाते हैं विक्रिया से। एक जो सैनिक वगैरह होते हैं, एक जीव, एक देव है, वो सैकड़ों सैन्य बना देते हैं विक्रिया से, अनेक शरीर
बीच में से काट डाला तो दो भाग तो अलग हो गया ना, भले शरीर एक ही
था। नहीं नहीं, वो तो जुड़ जाते। यहाँ अभी क्या लिखा, तिल तिल बराबर खंडित हो जाने पर बहुत ही जल्दी पारे की तरफ फिर, वो तो आत्म प्रदेश तो है ही, वहां पर शरीर भी ऐसे जुड़ जाते। देखो इन सब दुखों का कारण यह शरीर ही तो हुआ, शरीर सब विपत्तियों का स्थान है, क्लेश का कारणभूत निगोद शरीर। कठिन नरक गति से भी निकृष्ट पर्याय है तो निगोद जीवों की, ये साधारण वनस्पति का एक जिसको कहेंगे, जो हम आपको यहाँ नजर नहीं आते वे प्रायः वनस्पति काय के आश्रय से रहते हैं, किंतु निराधार भी बहुत जगह रहते हैं, यानी पूरे लोक में है, सूक्ष्म निगोद जिसको कहेंगे। त्रस जीव मनुष्य तिरियंचों के, कर्मभूमि मनुष्य तिरियंचों के शरीर में भी बसा करते हैं, यानी त्रस जीवों के और मनुष्य।
ये वनस्पति काय के आश्रय से रहते हैं, लेकिन उसकी
वो स्वयं वनस्पति काय के भी, अन्य वो कहाँ रहेंगे, तो अन्य वनस्पति के आधार से रहेंगे, या मनुष्य तिरियंचों के, मनुष्य तिरियंचों के शरीर के आधार से रहेंगे, या सूक्ष्म निगोद बिना आधार के रहेंगे, ये आधार से रहते वो सारे बादर निगोद है। दो इंद्रिय नारकी बादर निगोद कहाँ नहीं होते? तो नारकी के शरीर, देवों के शरीर, आहारक शरीर, केवली का शरीर, पृथ्वी कायिक में नहीं होते, जल कायिक में नहीं होते, अग्नि कायिकों में नहीं होते, वायु कायिकों में नहीं होते, वनस्पति कायिकों में होते। यानी वो स्वयं वनस्पति कायिक है, अन्य वनस्पतियों के आधार से रहेंगे, प्रत्येक के आधार से, सूक्ष्म बिना आधार के रहते हैं, उसी को सूक्ष्म कहते हैं। ये पीछे है ना गाड़ी? हाँ। दो इंद्रिय आदि जीवों के शरीर में भी निगोद रहते हैं, तभी तो वो मांस भक्षण कहते हैं ना इसको, ऐसा दो इंद्रिय आदि के शरीरों में निगोद जीव रहते हैं, तो ये चमड़े का त्याग करते हैं, या जो मांस भक्षण का त्याग है, अन्य भी जो, तो इन जहाँ वो ऐसे त्रस जीव उत्पन्न होते हैं, तो वो चीजें खाने से या उसको इस्तेमाल करने से इनकी हिंसा हो जाती है अनंत जीवों की, क्योंकि एक एक शरीर में कितने अनंत जीव है। इनका काम एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना है। वैसे तो सारे ही अलब्धि अपर्याप्त इतनी छोटी आयु वाले होते हैं, तो यहाँ मुख्यतः निगोद को बता रहे। श्वास वास्तव में नाम है नाड़ी के फड़कने बराबर काल का, पल्स बीट जो है, क्योंकि श्वास पेड़ों में भी पाई जाती है। यानी वो नाक से लेना वही श्वास नहीं है, क्योंकि पेड़ों के भी श्वास होती है, एक इंद्रियों के भी श्वासोश्वास है, अग्नि के भी है, जल को भी है, यानी जल का एक को, जिनके मुख नहीं है ऐसे एक इंद्रिय जीवों के भी श्वासोश्वास पाया जाता है। हम आपके जितने रोम के छिद्र है उनसे उतनी श्वासोच्छ्वास से चलती है, और उतने ही क्या, सर्व शरीर से चलती है। जो हम कहेंगे ना टिश्यू लेवल पर जो ऑक्सीजन इनटेक आउटपुट जो कुछ होता है वो सबको ले लेना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन सबके सारे शरीर से श्वास निकलता है और लेना यह बराबर चलता, निकलना और लेना यह बराबर चलता रहता है। एक सेकंड में 23 बार निगोदिया जीवों का जन्म और मरण होता है। हमने हिसाब लगा के आपको बोला था 24, हाँ करीबन। निगोद शरीर के क्लेशों का उद्भव। जन्म ही का नाम मरण है, मरण ही का नाम जन्म है। चाहे मरण कह लो चाहे जन्म कह लो, बात एक ही है। जैसे अंगुली सीधी ऐसे टेढ़ी कर दे, तो चाहे यह कह लो कि अंगुली टेढ़ी कर ली, और चाहे यह कह लो कि अंगुली की सीध मिट गई, दोनों का अर्थ एक ही है। अरे यहाँ ये मर गया तो वहां जन्म हुआ है ना, यहाँ पहले जी रहा था, यहाँ पहले जी, तीन समय भी कहाँ है। देखो देखो, मान लेते 10वें समय में यहाँ का जीवन चल रहा है, 11वें समय में वहाँ जन्म हुआ, और 11वें समय में यहाँ मरण कहेंगे ना, वे उत्पाद एक ही समय है, उसकी वो आयु, उसकी गति चालू हो गई सब कुछ। वो तीन समय वाली जो बात है सूक्ष्म जीवों में होती है, वो तो उसने शरीर का ग्रहण नहीं किया, आयु चालू होगी उसकी। सीत का मिटना, टेढ़ का बनना आदि दोनों का एक ही मतलब है, पूर्व भव की आयु का अलग होना और नवीन भव की आयु का प्रारंभ होना दोनों का एक समय है। निगोदिया जीव एक सेकंड में 23 बार जन्म मरण कर लेता है। यहाँ तो लोग यश, कीर्ति, विषय साधन आदि अनेक खटपट और कलाओं के लिए अपनी बुद्धि और विवेक लगाते हैं, उन निगोद जीवों की कौन सुने। एक कवि ने कहा है, जो लोग किसी के सुख से सुख मानते हैं, किसी के दुख से दुख मानते हैं, इतने व्यामोही है, वे निगोद जाने की तैयारी में इस बात का अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो एक जीव की श्वास जब चले तभी वहां बसे हुए अनंत जीवों की श्वास चले, जब एक जीव मरा उसी समय अनंत जीव मरे। एक साथ जन्मना और एक साथ मरने का अभ्यास मोहिजन यहाँ कर रहे हैं। कहीं निगोद में जाना पड़े तो उसके अभ्यास में कसर नहीं रह जाए। अपने विशेष साधन में किसी के सुख में सुख मानना और किसी के दुख में दुख मानना तथा इतना अधिक तीव्र व्यामोह का होना, यह दुर्गति का ही तो काम है। रुकेंगे अभी, कि नारकिका और निगोदों का हो गया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।
नलिन नलिन।